न्यूज 18 हिंदी के स्पेशल पॉडकास्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वीकार करिए पूजा प्रसाद का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूं एक दौर के बागी लेखक की कहानी, जिसने अपने लेखन के मार्फत समाज के वे लिहाफ उतारे जिनके नीचे बदबू पनपने लगी थी। आपने सही अनुमान लगाया, मैं बात कर रही हूं सआदत हसन मंटो की, जिनका लेखन संवेदनाओं को जगाता नहीं, झकझोरता है, रोमांचित नहीं करता, परेशान करता है, और कई सवाल बवंडर की तरह जेहन में घूमने लगते हैं। आइए आज सुनते हैं मंटो की कहानी आर्टिस्ट लोग। जमीला को पहली बार महमूद ने बागी जिन्ना में देखा। वो अपनी दो सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सबने काले बुरके पहने थे मगर नकाबें उल्टी हुई थी। महमूद सोचने लगा, ये किस किस्म का पर्दा है कि बुरका ओढ़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा है, आखिर इस पर्दे का मतलब क्या? महमूद जमीला के हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती जा रही थी, महमूद उसके पीछे चलने लगा। उसको इस बात का कतई होश नहीं था कि वो एक गैर अखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो रहा है। उसने सैकड़ों मर्तबा जमीला को घूर घूर के देखा। इसके अलावा एक दो बार उसको अपनी आंखों से इशारे भी किए, मगर जमीला ने उसे दरखूर एतीना ना समझा और अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ती चली गई। उसकी सहेलियां भी काफी खूबसूरत थीं, मगर महमूद ने उसमें एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे के साथ मकनातीस की होती है। वो उसके साथ चिमट कर रह गया। एक जगह उसने जुर्रत से काम लेकर जमीला से कहा, हुजूर अपना नकाब तो संभालिए, हवा में उड़ रहा है। जमीला ने यह सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के दो सिपाही जो उस वक्त बाग में ड्यूटी पर थे दौड़ते आए और जमीला से पूछा, बहन क्या बात है? जमीला ने महमूद की तरफ देखा जो सहमा खड़ा था और कहा, ये लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा था, जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूं ये मेरा पीछा कर रहा है। सिपाहियों ने महमूद का सरसरी जायजा लिया और उसको गिरफ्तार करके हवालात में दाखिल कर दिया, लेकिन उसकी जमानत हो गई। अब मुकदमा शुरू हुआ। उसकी रुएदाद में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि यह तफसील तलब है। किस्सा मुख्तसर यह है कि महमूद का जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह कैद बामुशक्कत की सजा मिल गई। उसके वालिदैन नादार थे, इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील ना कर सके। महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसको अगर एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने उससे चंद बातें करना चाही तो ये क्या जुर्म है, जिसकी पादाश में वो 2 माह कैद बामुशक्कत भुगत रहा है। जेल खाने में वो कई मर्तबा बच्चों की तरह रोया। उसको मुसव्विरी का शौक था, लेकिन उससे वहां चक्की पिसवाई जाती थी। अभी उसे जेल खाने में आए 20 रोज ही हुए थे कि उसे बताया गया कि उसकी मुलाकात आई है। महमूद ने सोचा कि ये मुलाकाती कौन है। उसके वालिद तो उसे सख्त नाराज थे, वालिदा अपाहिज थी और कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। सिपाही उसे दरवाजे के पास ले गया जो आहिनी सलाखों का बना हुआ था। उन सलाखों के पीछे उसने देखा कि जमीला खड़ी है। वो बहुत हैरत ज़दा हुआ। उसने समझा कि शायद किसी और को देखने आई होगी, मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर उससे कहा, मैं आपसे मिलने आई हूं। महमूद की हैरत में और इजाफा हो गया, मुझसे? जी हां, मैं माफी मांगने आई हूं कि मैंने जल्दबाजी की, जिसकी वजह से आपको यहां आना पड़ा। महमूद मुस्कुराया, हाय इस जूदे पशेमा का पशेमा होना। जमीला ने कहा, ये गालिब हैं? जी हाँ, गालिब के सिवा और कौन हो सकता है जो इंसान के जज्बात की तर्जुमानी कर सके। मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन मैं यहाँ आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए कि ये मेरा घर नहीं है, सरकार का है। इसके लिए मैं माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपके खादिमा हूँ। चंद मिनट उनके दरमियान और बातें हुई जो मोहब्बत के अहद व पैमान थीं। जमीला ने उसको साबुन की एक टिकिया दी, मिठाई भी पेश की। इसके बाद वो हर 15 दिन के बाद महमूद से मुलाकात करने के लिए आती रही। इस दौरान में इन दोनों की मोहब्बत उस्तवार हो गई। जमीला ने महमूद को एक रोज़ बताया, मुझे मौसिकी सीखने का शौक़ है। आजकल मैं खान साहब सलाम अली खान से सबक ले रही हूँ। महमूद ने उससे कहा, मुझे मुसव्विरी का शौक़ है। मुझे यहाँ जेल खाने में और कोई तकलीफ़ नहीं, मशक्क़त से मैं घबराता नहीं, लेकिन मेरी तबीयत जिस फ़न की तरफ मायल है उसकी तस्कीन नहीं होती। यहाँ कोई रंग है ना रोगन है, कोई कागज़ है ना पेंसिल, बस चक्की पीसते रहो। जमीला की आंखें फिर आंसू बहाने लगीं। बस अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं, आप बाहर आए तो सब कुछ हो जाएगा। महमूद 2 माह की कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी। उस काले बुरके में जो अब भूसला हो गया था और जगह जगह से फटा हुआ था। दोनों आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शादी कर लें। चुनांचे शादी हो गई। जमीला के माँ बाप कुछ असासा छोड़ गए थे, उससे उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया और पुरमसरत जिंदगी बसर करने लगे। महमूद एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताकि अपनी मुसव्विरी का शौक पूरा करे। जमीला खान साहब सलाम अली खान से फिर तालीम लेने लगी। 1 बरस तक वो दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसव्विरी सीखता रहा और जमीला मौसिकी। उसके बाद सारा असासा खत्म हो गया और नौबत फाकों पर आ गई। लेकिन दोनों आर्ट शदाई थे। वो समझते थे कि फाके करने वाले ही सही तौर पर अपने आर्ट की मेराज तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वो अपनी इस मुफलिसी के जमाने में भी खुश थे। एक दिन जमीला ने अपने शौहर को ये मुर्दा सुनाया कि उसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। महमूद ने यह सुनकर उससे कहा, नहीं, ट्यूशन व्यूशन बकवास है, हम आर्टिस्ट लोग हैं। उसकी बीवी ने बड़े प्यार से कहा, लेकिन मेरी जान, गुजारा कैसे होगा। महमूद ने अपने फूसड़े निकले हुए कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, आर्टिस्ट को इन फजूल बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। हम आर्ट के लिए जिंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए जिंदा नहीं रहता। जमीला ये सुनकर खुश हुई। लेकिन मेरी जान, आप मुसव्विरी सीख रहे हैं, आपको हर महीने फीस अदा करनी पड़ती है, उसका बंदोबस्त भी तो कुछ होना चाहिए, फिर खाना पीना है, उसका खर्च अलाहिदा है। मैंने फिलहाल मुसव्विरी की तालीम लेना छोड़ दी है, जब हालात मुवाफिक होंगे तो देखा जाएगा। दूसरे दिन जमीला घर आई तो उसके पर्स में 15 रुपए थे, जो उसने अपने खाविंद के हवाले कर दिए और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी है, ये 15 रुपए मुझे पेश की मिले हैं, आप मुसव्विरी का फन सीखने का काम जारी रखें। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुलाजमत करो, मुलाजमत मुझे करना चाहिए। जमीला ने खास अंदाज में कहा, हाय, मैं आपकी गैर हूं, मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाजमत कर ली है तो इसमें हर्ज ही क्या है। बहुत अच्छे लोग हैं, जिस लड़की को मैं मौसिकी की तालीम देती हूं बहुत प्यारी और जहीन है। ये सुनकर महमूद खामोश हो गया। उसने मजीद गुफ्तगू न की। दूसरे हफ्ते के बाद वो 25 रुपए लेकर आया और अपनी बीवी से कहा, मैंने आज अपनी एक तस्वीर बेची है, खरीदार ने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन खसीस था, सिर्फ 25 रुपए दिए, अब उम्मीद है मेरी तस्वीरों के लिए मार्केट चल निकलेगी। जमीला मुस्कुराई। तो फिर काफी अमीर आदमी हो जाएंगे। महमूद ने उससे कहा, जब मेरी तस्वीरें बिकना शुरू हो जाएंगी तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दूंगा। जमीला ने अपने खामिद की टाई की गिरह दुरुस्त की और बड़े प्यार से कहा, आप मेरे मालिक हैं, जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा, अब तुम फिक्र ना करो, मेरा काम चल निकला है, 4 तस्वीरें कल परसों तक बिक जाएंगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे, फिर तुम अपनी मौसिकी की तालीम जारी रख सकोगी। एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो उसके सर के बालों में धुनकी हुई रुई का गुबार इस तरह जमा था जैसे किसी अधेड़ उम्र आदमी की दाढ़ी में सफेद बाल। महमूद ने उससे इस्तफसार किया, ये तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी है? मौसिकी सिखाने जाती हो या किसी जंग फैक्ट्री में काम करने जाती हो? जमीला ने, जो महमूद की नई रजाई की पुरानी रुई को धुनक रही थी, मुस्कुराकर कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें किसी बात का होश भी नहीं रहता। महमूद ने हुक्की की नाई मुंह में लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, होश वाकई नहीं रहता। जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करनी शुरू की, ये धुनकी हुई रुई का गुबार आपके सर में कैसे आ गया? महमूद ने हुक्के का एक कश लगाया, जैसा कि तुम्हारे सर में मौजूद है, हम दोनों एक ही जंग फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ आर्ट की खातिर। जमीला और महमूद के रूप में कई आर्टिस्ट लोग जंग की फैक्ट्री में लग जाते हैं। जिंदगी भी तो जंग की फैक्ट्री हो जाती है जब बात दाल रोटी की आती है। मगर प्रेम एक ऐसा ईंधन होता है जो जमीलाओं और महमूदों के जीवन को सींचे रखता है। कई विवादास्पद और चर्चित कहानियां कह चुके मंटो की यह कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जल्द ही फिर मिलूंगी आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए पूजा प्रसाद को दे इजाज़त। नमस्कार।